नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने को जीवन यापन और व्यापार में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण बताया। सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार, प्रयोगात्मक व शोधात्मक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रही है और चार धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने से देश में जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक विश्वास पर आधारित ढांचे को मजबूत करता है। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी। लोकसभा ने इस विधेयक को बुधवार को पारित कर दिया था। यह विधेयक जीवन यापन और व्यापार सुगमता के लिए विश्वास पर आधारित शासन को और मजबूत करने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करता है, ताकि कुछ अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और उन्हें तर्कसंगत बनाया जा सके। विधेयक छोटे अपराधों को उसके अनुपात में जुर्माने और दंड को संशोधित करने जैसे उपाय लागू करेगा। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि संसद में जन विश्वास विधेयक 2026 का पारित होना जीवन और व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह विधेयक कई कानूनी प्रावधानों को कम करके सभी के लिए जीवन को आसान और व्यापार को सरल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को साकार करता है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने इस संबंध में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। सचिव ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अफवाहें और गलत सूचनाएं फैलती जा रही हैं, जिससे लोग अनावश्यक चिंता और घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं। डॉक्टर मित्तल ने कहा कि वर्तमान में केवल 17 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ही नियमित या समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। उन्हें सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सटीक जानकारी का समय पर प्रसार सुनिश्चित करने और नियमित जनसंचार बढ़ाने को कहा गया है। राज्यों को जमाखोरी, हेराफेरी और घबराहट पैदा करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने की भी सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रदेश में वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों को नियमित करने को लेकर दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस संबंध में 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्यावेदन सक्षम अधिकारी को दें और सक्षम अधिकारी उनके प्रत्यावेदन पर 8 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय ले। इस मामले की सुनवाई के बाद उनकी याचिका अंतिम रूप से निस्तारित कर दी गई। मामले के अनुसार शिक्षा मित्र मीना आर्य, गुलशन राजा, रविता और अन्य ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर कर कहा कि वे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मित्र के तौर पर वर्ष 2005 से नियमित सेवाएं दे रहे हैं। उनके पास प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा होने के साथ ही स्नातक की डिग्री भी है, साथ ही उन्होंने TET परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित MBPG कॉलेज हल्द्वानी एवं कोटद्वार महाविद्यालय में स्थापित विज्ञान प्रयोगशालाओं को हाईटेक बनाया जाएगा। दोनों महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं के उच्चीकरण को 4 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। दोनों महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को IIT कानपुर के सहयोग से उच्चीकृत किया जाएगा, जिससे कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को आधुनिक उपकरणों के जरिए प्रयोगात्मक एवं शोधात्मक प्रशिक्षण मिल सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार, प्रयोगात्मक व शोधात्मक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में स्थापित प्रयोगशालाओं को उच्चीकृत कर हाईटेक बनाया जाएगा। आगामी 19 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। 4 धाम यात्रा में यातायात व्यवस्था को लेकर इस बार उत्तराखंड पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पूरे यात्रा को मॉनिटर करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका सुपरविजन CO लेवल के अधिकारी करेंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग को 137 सेक्टर में बांटा गया है। 10-10 किलोमीटर के इन सेक्टर में दिन रात की पाली में 4-4 कांस्टेबल की तैयारी मोटरसाइकिल के साथ रहेगी। IG गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं, साथ ही आपदा की स्थिति में हॉटस्पॉट पर SDRF की तैनाती भी की गई है।
यात्रा जो आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, श्री धाम कपाट खुल रहे हैं इस अप्रैल में, इसकी हमने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जितने भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट 4 धाम में करना था वहां पे हम लोगों ने कर दिया है। जितने ऑफिसर्स को वहां पे पोस्ट करना था हमने वहां पे कर दिया है। 4 धाम को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए रेंज लेवल पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, उसका सुपरविजन एक गजेटेड ऑफिसर CO रैंक के ऑफिसर को दिया गया है। पूरे 4 धाम सेक्टर को, जैसा कि आप रूट्स हैं, 4 धाम के रूट्स को 137 सेक्टर में बांटा गया है और ये फर्दर इनका डिवीजन 10-10 किलोमीटर के डिवीजन में किया गया है।
ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और वन आधारित आजीविका को मजबूत करने की दिशा में पौड़ी गढ़वाल वन प्रभाग ने एक अहम पहल की है। वन विभाग द्वारा कंडोलिया वन पंचायत के अंतर्गत पंचायती वन क्षेत्र में बोर होल पद्धति से लीसा विदोहन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पौड़ी, खिरसू और कोट विकासखंड की विभिन्न महिला समूहों की करीब 60 से 70 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को लीसा विदोहन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों से अवगत कराया गया, साथ ही बोरहोल पद्धति के सुरक्षित उपयोग और उपकरणों के संचालन का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया, जिससे वे स्वयं इस कार्य को करने के लिए सक्षम हो सकें। DFO गढ़वाल महातिम यादव ने बताया कि वन विभाग और ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित स्थलों पर जल्द ही लीसा विदोहन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।
विभिन्न महिला समूहों के सदस्यों को लीसा विदोहन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके क्रम में कंडोलिया वन पंचायत में बोरहोल पद्धति से किस तरीके से लीसा निकाला जा सकता है, जैसे ड्रिल मशीन से कैसे बोरहोल करना है, उसमें कैसे पाइप लगानी है, कैसे उसका केमिकल ट्रीटमेंट या एसिड ट्रीटमेंट करना है, उनकी जानकारी दी गई। इसमें खिरसू ब्लॉक, कोट ब्लॉक तथा पौड़ी ब्लॉक के लगभग 60 से 70 महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।
प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। देहरादून समेत कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई पर्वतीय जिलों में वर्षा, गर्जन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ बारिश तथा 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। राज्य के अन्य पर्वतीय जनपदों और हरिद्वार में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि उधमसिंह नगर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जनविश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने को जीवन यापन और व्यापार में सुगमता के लिए महत्वपूर्ण बताया। सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, राज्य सरकार उच्च शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता, नवाचार, प्रयोगात्मक व शोधात्मक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रही है और 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।